ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। राजा अगले जन्म में पुरंजन की को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 26।
यं संज्ञा पशवोनेन तम यज्ञ पशवोनेन संज्ञप्ता ये दलायुना संज्ञप्ता ये दलायुना कुठारैश्चिच्छु तु क्रुद्धाः स्मरन्तो मे ममस्य यतत्। तब अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। उस परम निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से बेधने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से खंड खंड काटा जा रहा था। तात्पर्य, जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी ही यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द बताता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारें। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं को सींगों से बेधे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। इसे न जाने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग बेचारे पशुओं का वध करते जाते हैं। तथा कथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाई घर खोल रखे हैं। जो थोड़े धार्मिक हैं वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपासनाग्रहों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा अधम हैं वे कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा उत्पन्न एक जीव द्वारा दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशु वध का तिरस्कार करते आए हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तानहम द्विष्टः क्रूरान संसोर्षु नराधमान क्षिपाम्य जस्र अशुभम आनुसरीशेष्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु और शैतान हैं वे मनुष्यों में अधम हैं, और वे मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्यारों द्विषतः को जो अन्य जीवों तथा ईश्वर से द्वेष रखते हैं अंधकार में डाल दिया जाता है। वे जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है। उस परम निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से बेधने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से खंड खंड काटा जा रहा है। जैसे करनी वैसे भरनी। कर्मों का फल इस जगत में हमें मिलकर ही रहना है। कोई भी व्यक्ति कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। सरकार के कानून से भले हम बच जाएं, लेकिन भगवान के कानून से कोई भी नहीं बच सकता है। बंगाली में कहावत है जो प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, यदि जावे बंगे कपाल जावे संगे। जहां भी साथ में जाओगे, इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे, कपाल तो साथ में जाएगा। मतलब जो लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहना है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि कोई भी कार्य करने के पहले हम सोचें। हर एक कार्य का फल होता है, भागवत क्लास में सोने का भी फल होता है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, कम से कम क्लास में आते हैं उसका फायदा तो होता है। तो ऐसा कोई कार्य जगत में नहीं है जिसका फल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन में सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार के कार्य कर रहा हूं और इनका फल क्या होगा। यह विवेक बुद्धि जिसमें नहीं है वो पशु कहलाता है। मनुष्य में और पशु में अंतर यह होता है कि मनुष्य जीवन में हमें यह विवेक बुद्धि होती है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए वो हमें पता चल सकता है, या कम से कम हमें जान लेना चाहिए। और पशु हत्या इन वर्जित कार्यों में से एक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण एक वर्जित कार्य है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हर एक प्राणी को अपना प्राण प्रिय है और उसे जीवित रहने का अधिकार है, क्योंकि भगवान ने प्राण उस प्राणी को दिया है। जब भगवान ने प्राण उन्हें दिया है तो हम उस प्राण को ले जाने वाले कौन होते हैं? अगर हमने किसी का प्राण ले लिया तो हमारा प्राण भी ले लिया जाएगा। प्राण के लिए प्राण, ये नियम जो भौतिक जगत में है वो भगवान के कानून में भी चलता है। यहां भी हम अगर देखते हैं कि किसी ने किसी दूसरे का व्यक्ति का खून किया हो तो उसका भी खून हो जाता है, मतलब उसको भी फांसी दंड मिल जाता है। तो उसी प्रकार से हमने अगर कोई पशु की हत्या की तो हमारी भी मृत्यु होनी है। लेकिन आजकल इस बात को लोग समझते नहीं है। शायद सारे विश्व भर में 90% से ज्यादा लोग, 95% ही कहें तो ठीक रहेगा, लोग मांसाहारी हैं। तो सोचिए कि कितना पाप बढ़ रहा है। कितने ऐसे देश हैं जिनमें शाकाहारी होने की एक संस्कृति है धर्म के आधार पर। जिन देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है वो लोग भी मांसाहारी बन गए। जहां हमारे एशिया के जो पूर्व भाग में जो भी देश हैं जहां बौद्ध धर्म ज्यादा फैला हुआ है वो लोग कितना खाते हैं, मांसाहार कितना करते हैं। तो ऐसे कोई भी जगह बची हुई नहीं है जहां लोग मांसाहार नहीं करते हैं। हिंदुओं में से जो ब्राह्मण परिवार के थे वो भी आजकल सब कुछ करने लगे हैं। जो जैन धर्म के हैं, जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, आजकल वो लोग भी बहुत कुछ खाने पीने लगे हैं। और अन्य हिंदुओं की बात तो दूर है, फिर मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि दूसरे धर्मों वालों की बात तो दूर ही है। और फिर जो बिल्कुल असभ्य हैं, अनार्य हैं दूसरे समाजों में दूसरे देशों में, उनका क्या कहना। तो कितने करोड़ों 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 पशुओं की रोज हत्या होती है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए कितने लोग अपने आप के लिए और दूसरों के लिए नरक का टिकट खरीद रहे हैं वो नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पंचम स्कंद में परीक्षित महाराज को वर्णन करते हैं कि नाना प्रकार के नरक होते हैं, और इन नरकों में से कई ऐसे होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो पशु हत्या करते हैं, उनके लिए सीट बुक है वहां पर, और वहां पर वेटिंग लिस्ट काफी है अभी, क्योंकि इतने लोग बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी यमराज को काफी काम पड़ जाता है, लोड बहुत हो जाता है यमराज जी के ऊपर, क्योंकि उन नरक लोकों में जो है लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन फिर भी यमराज अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, उनके काफी असिस्टेंट वगैरह होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे लोग जो कि शिकार करने जाते हैं जंगल में और साथ में अपने घोड़े को ले जाते हैं या फिर कोई अपने कुत्तों को ले जाते हैं ताकि वो शिकार को अच्छी तरह से ढूंढ सके, उनका पीछा कर सके, और फिर वो पशुओं को क्रूर तरह से मारते हैं, उनको एक नरक लोक में भेजा जाता है जिसका नाम है प्राणारोध। तो इसमें क्या होता है कि जब पशु व्यक्ति वहां चले जाता है मृत्यु के बाद में, तो उसे भी नाना प्रकार के तीरों से वगैरह त्रिशूलों से उसे चोप दिया जाता है और उसके बाद में फिर उसे गंदी गंदी चीजों के सागर में उसे तैरना पड़ता है। नाना प्रकार की गंदगी होती है उसमें उसे रहना पड़ता है लंबे समय तक, बहुत दर्द होता है उसे। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि अपने मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक तथाकथित सामाजिक धर्म के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और ऐसे यज्ञ में पशुओं की हत्या करते हैं और फिर पशुओं को खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को विशेषण नाम के एक नरक में भेजा जाता है। ऐसे इस नरक में जाकर उनको नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है उनको। यमराज के जो सहायक हैं उनको बहुत दर्द देते हैं, अंत में उनको मार डालते हैं। और इसके बाद में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पशु या पक्षी उनके पास संरक्षण के लिए आते हैं, आश्रय के लिए आते हैं, उन पशुओं को ऐसा वो बहका देते हैं कि वो पशु समझते हैं कि हाँ मेरा संरक्षण यहां पर होगा, मैं यहां सुरक्षित हूं, और फिर उनको ले आकर अंत में उनको नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, उनको फिर आधा मार डालते हैं, कभी पूरी तरह से मार डालते हैं, फिर उनको खा जाते हैं। कई बार जब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन से या रेलगाड़ी से जाते हैं तो कई जगह में हम देखते हैं, या गांव में जाते हैं तो कई जगह बकरियों को पाल पोस के रखा हुआ होता है। खास करके पिछले इस महीने में थोड़े दिन पहले हम गांव में गए थे तो एक जगह गौशाला में भी गायों वो बकरियों के लिए भी एक स्थान रखा गया और बकरियों को अच्छी तरह से पालते पोसते, बकरी बड़ा बड़े खुश लगते हैं, वहां पर उठते बैठते हैं, छोटे बच्चे उनके जो खेल कूद रहे हैं, खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं ये लोग। लेकिन अंत में क्या करते हैं, अंत में काट देते हैं या बेच देते हैं, बेचकर उनको काट फिर जो लोग खरीदते हैं उनको काट देते हैं। मतलब बकरियों को लगता है कि हाँ हम यहां सुरक्षित हैं, ये लोग हमारे प्रभु हमारे स्वामी हैं, कितनी अच्छी तरह से हमारा देखभाल कर रहे हैं, हमें अनाज हमें खाना दे रहे हैं, सुला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो झूठी आशा देते हैं कि आप यहां सुरक्षित हो, एक एक करके लेकिन बकरियों को ले जाते हैं। तो बकरियों की बुद्धि कम होती है, वो समझ नहीं सकते कि वास्तव में एक बकरी हमारे जो साथी है वो ले गए, वो कसाई खाने ले चले गए, अभी हमारा भी नंबर आएगा, उनको ये बुद्धि नहीं है, वो घास खिलात खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो झूठे संरक्षण प्रदान करते हैं, झूठी आशा करके अंत में पशुओं की हत्या करते हैं, उन्हें भी शूलप्रोत नाम के एक नरक में भेजा जाता है और वहां पर उनको भी बहुत कष्ट होता है। यमराज के जो दूत हैं यमदूत, वो आकर नाना प्रकार के अस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, और फिर साथ साथ में ऐसे बड़े खतरनाक पशु पक्षी होते हैं जिनके बड़े बड़े चोंच होती हैं, वो आकर उनके चमड़े फाड़ देते हैं, और इस प्रकार से नाना प्रकार से उनको यातना झेलनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है, टॉर्चर होता है उनका, फिर अंत में वो मर जाते हैं। और ये जब सब हो रहा है तो उनको अपने पूर्व जन्मों के सारे पाप याद आते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के नरक लोक हैं जिनमें ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो लोग पशु हत्या करते हैं। तो यहां इस श्लोक में ऐसे परिस्थिति का वर्णन है कि महाराज पुरंजन जब ले गए ले जाए गए बाहर उनको ले जाया गया तो वहां पर क्या हुआ कि ये सब बड़े बड़े प्राणी जिन प्राणियों की हत्या उन्होंने की थी वो सारे प्राणी उनके सींगों से उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। मतलब वही दशा, क्योंकि महाराज पुरंजन की मृत्यु हो गई, मतलब आत्मा जो है वो शरीर छोड़कर चली गई, फिर कौन किस प्रकार की यातनाएं उसे सहन करनी पड़ती हैं उनका वर्णन इस श्लोक में दिया जा रहा है। तो ये सिंहों से मार रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जहां जैसे सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था कि वही पक्षी आकर पशु आकर हमें मारेंगे। तो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये सब दंत कथा है, काल्पनिक है। अरे कहां है नरक, कहां है स्वर्ग, यह पृथ्वी लोक पर ही सब कुछ है, स्वर्ग भी यही है नरक भी यही है। वो एक दृष्टि से सही है, पृथ्वी लोक के ऊपर ही नरक लोक है स्वर्ग लोक है। हर एक आदमी अपने जीवन को नरक बना सकता है, अपने आप को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा नरक लोक और स्वर्ग लोक अलग से है भी। और नरक लोक में हमें जाना पड़ेगा अगर हम इस प्रकार के पाप हमने किए तो इस प्रकार से यहां पर पुरंजन राजा की दशा हम देख रहे हैं कि कितनी बुरी परिस्थिति है और कितने हजारों लाखों लोग वहां के लिए लाइन में अभी खड़े हैं। अगर उनको पता होता कि उनकी दशा क्या होने वाली है, श्रद्धा हो जाती, उनको जानकारी होती, तो कितने लोग ऐसे करते हैं। इसलिए भय जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस का डर नहीं रहता तो आज न जाने कितनी ज्यादा चोरियां हो जाती, कितनी ज्यादा खून हो जाते। पुलिस होते हुए भी इतना सब कुछ हो रहा है, तो अगर पुलिस का डर नहीं होता तो कितना कुछ होता। तो इसी प्रकार से ये सब चीजें शास्त्र में क्यों बताई गई हैं, ताकि इंसान सोच के समझ के इन कामों को पापों को करना बंद कर दे। वैसे मनुष्य जीवन को चाहिए, मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम केवल भगवान की भक्ति करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करें, लेकिन अज्ञान की वजह से हम ऐसे सब पापों में पड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब निमाय पंडित की लीला अभी तभी तक कर रहे थे तो उस समय उनके साथ चांद काजी नाम के एक मुसलमान काजी का संवाद हुआ। क्यों, चांद काजी ने देखा कि हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन बहुत बढ़ रहा है और इसको रोकना चाहिए, अभी अच्छा नहीं है। हमारे मुसलमान राज्य में अगर ऐसे हिंदुओं का धर्म फैलता रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने बंदी लगा दी और घोषणा की कि आज से नगर संकीर्तन बंद हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ में एक भीषण यात्रा बाहर निकाली और हरिनाम संकीर्तन करते करते हजारों की संख्या में भक्त वहां पर आए, मशाल वगैरह सब साथ में लेकर सब आए। काजी तो बहुत घबरा गए, काजी भागकर अंदर अपने कमरे में चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए तो काजी ने कहा कि अरे मैं तो तुम्हारे नीलांबर चक्रवर्ती जो तुम्हारे दादा हैं मैं उनका तो पुत्र जैसा हूं, तो ऐसे देखा जाए तो हम रिश्तेदार हैं, मैं तुम्हारे मामा जैसा हूं, और भांजा फिर मामा के प्रति जो ऐसे व्यवहार क्यों करेगा, तो तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो चांद काजी चैतन्य महाप्रभु के शक्ति को देखकर, उनके साथियों को देखकर बहुत घबरा गए। फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी से कहा कि ठीक है आप मेरे रिश्तेदार हैं तो हम प्रेम से ही आए हैं, इसलिए मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। और प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि आप जब गाय का दूध पीते हैं तो गाय आपकी मां हो जाती है, क्योंकि जो भी हमें दूध देता है वो मां हो जाती है, तो आप गाय की हत्या क्यों करते हैं। तो उस समय चांद काजी जो कि बड़े पढ़े लिखे हुए थे उन्होंने जवाब दिया, आपके जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें भी हम पढ़ते हैं कि पुराने काल में जो ऋषि वगैरह हुआ करते थे वो भी पशुओं की हत्या करते थे और गायों की हत्या भी करते थे, तो हमारे कुरान में भी ऐसे हम करते हैं। हमारे कुरान में बताया गया है कि दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति, बढ़ते हुए भोग का मार्ग है और दूसरा कम होते हुए भोग का मार्ग है। कब ज्यादा बढ़ते हुए भोग के मार्ग में इसकी अनुमति दी जाती है, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है उसमें अनुमति नहीं दी जाती है। तो ज्यादातर लोग समाज में इस पहले मार्ग में रहते हैं तो इसलिए उनके लिए पशु हत्या ठीक है, इसके लिए अनुमति दी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया कि देखिए चांद काजी, जो वेदों में पशु हत्या के बारे में जो भी आज्ञा वगैरह दी गई हैं, वो गाय के लिए नहीं है। किसी भी हालत में गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर पशु को यज्ञ में बलि चढ़ाना भी है तो कोई निम्न श्रेणी का, जैसे कि कोई बकरे हो या ऐसे कुछ, लेकिन कभी भी गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाय माँ के समान है। और जो भी व्यक्ति गाय की हत्या करता है वो इतने जन्मों के लिए नरक में जाएगा, इतने हजारों सालों के लिए वो नरक में जाएगा जितने बाल उस गाय के शरीर के ऊपर है। तो मान लीजिए अगर गाय के शरीर के ऊपर एक बाल है तो 1000 साल नरक में रहना पड़ेगा, दो बाल हैं तो 2000 साल। लेकिन गाय के शरीर के ऊपर कितने बाल हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे। हर एक गाय के ऊपर जितने भी बाल हैं उतने हजारों साल हमें नरक में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति हजारों हजारों गायों की हत्या करते हैं तो उन्हें कितने लाखों लाखों सालों तक नरक में जाना पड़ेगा केवल गो हत्या के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। और चैतन्य महाप्रभु आगे समझाने लगे कि वैसे भी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, ब्राह्मण कई बार प्राणियों की हत्या करते थे यज्ञ में, उनकी आहुति बल्कि चढ़ाते थे, और कभी कभी गाय के साथ भी ऐसे हुआ करता था। लेकिन ये केवल ऐसे गाय थे जो बूढ़े थे, और इतना ही नहीं, ऐसे बूढ़े गायों की हत्या जब करते थे ये तो उसको हत्या नहीं कहते थे, क्योंकि अपने मंत्रों की शक्ति से वो पुनः इनको एक नया जीवन देते थे, नया शरीर देते थे। तो बल्कि उस गाय के हित के लिए होता था ये, गाय का नुकसान कभी नहीं होता था। क्योंकि जब यज्ञ संपन्न किए जाते थे पुराने काल में तो ये आवश्यकता थी कि ब्राह्मण वहां पे मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से करें। अगर मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से नहीं होता, उनमें कोई दोष होता या विधि विधान में कोई दोष होता, तो जो पशु वहां बलि चढ़ाई दी जाती थी वो पुनः जीवित नहीं हो सकती थी। तो मतलब यज्ञ ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा इस बात से की जाती थी कि पशु जिसके बलि चढ़ाया है वो पुनः जीवित हो गया है या नहीं। और उस काल में ब्राह्मण भी ऐसे योग्य और शुद्ध थे जो कि इस प्रकार से पशुओं को, यहां तक बूढ़े गायों को भी वो बलि चढ़ाते थे और फिर से पुनः जीवित करते थे उनको। इसलिए ये हत्या नहीं कहलाती थी, बल्कि उनका हित के लिए एक कार्य होता था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को समझाया, तो चांद काजी के पास कोई जवाब रहे नहीं। और वास्तव में इस बात का फायदा बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जो लोग करते हैं तो उनको बहुत बुरी सजा मिलेगी। जैसे हमने पहले बताया, उनको तो वशसन नाम के नरक में भेजा जाता है। धर्म के नाम पे कलकत्ता में भी, जैसे हमने देखा है खुद, वहां काली की पूजा बहुत होती है, तो जो मांस बेचने वाले दुकान होते हैं वहां जो भी मांस बेचा जाता है वो लोग बोलते हैं कि काली को भोग चढ़ाकर, बलि चढ़ाकर ये पशु हम बेच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसकी बहुत कड़ी निंदा करते थे। वो कहते थे कि अगर काली देवी को भोग चढ़ाना भी है तो केवल शास्त्रों के आदेश के अनुसार करना चाहिए, महीने में एक बार, और वो भी खुद करना चाहिए, और फिर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और मंत्रों में क्या कहते हैं कि मैं आपकी हत्या कर रहा हूं और अगले जन्म में आप मेरी हत्या करोगे। तो ऐसे बार बार बोलते बोलते व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं इतनी हत्या कर रहा हूं पशु की, तो मेरे कितने जन्मों तक ये पशु हत्या करते रहेंगे। और वो भी अमावस्या के रात को होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करके स्वयं काटना चाहिए पशु को। और धीरे 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 जो व्यक्ति है फिर सुधर जाता है, सोचने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। लेकिन जो आजकल वास्तव में चल रहा है वो ऐसे है कि लोग कत्ल खाने खोल रहे हैं, बड़े बड़े मांस की दुकानें खोल रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, और फिर जो पशुओं की हत्या होती है बड़े पैमाने पर, वो कहते हैं कि ये बलि चढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है। और ज्यादातर जो लोग वास्तव में अपने जिह्वा की संतुष्टि के लिए मांसाहार करना चाहते हैं, वो धर्म का कोई बहाना बनाकर कर लेते हैं। कई ऐसे यहाँ भी बेलगाम में इतने सारे अनुष्ठान होते हैं, क्या बोलते हैं, गोंधड़ा गोंधली, क्या बोलते हैं, गोंधड़ गोंधड़, जिसमें भर भर के बकरियों को बलि बलि चढ़ाया जाता है, लाखों लाखों बेचारे उसी प्रकार से उनको आके रखते हैं, पशु छोटे बकरी होते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम सुरक्षित हैं, हमें अच्छी तरह से खिला पिला कर मोटा कर रहे हैं, क्यों मोटा कर रहे हैं, केवल आगे जाके उनको मारने के लिए ताकि हम उनको खा सकें। तो कितना सारा पाप हो रहा है यहाँ, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि किसी छोटे से छोटे प्राणी को भी अगर हम कष्ट दें तो उसका फल हमें भुगत कर रहना होगा। यहां तक कि जो निर्दोष प्राणी है, भले हमारा खून आकर पिए, जैसे कि मच्छर होते हैं, कॉकरोच होते हैं, कभी कभी आके हमें काटते हैं ये प्राणी, लेकिन ये निर्दोष हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो हमें कष्ट दे रहे हैं, उनकी ये बुद्धि नहीं होती, वो तो अपने शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने के लिए बद्ध होते हैं, वो समझ नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम समझ सकते हैं कि हमारे कार्यों से दूसरों को दुख हो रहा है तो हमें नहीं देना करना चाहिए ऐसा कार्य, दूसरों को कष्ट देना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये मनुष्य समझ सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं या मच्छर होते हैं, ये ऐसी बातें नहीं समझ सकते, तो वो निर्दोष हैं। तो छोटे छोटे प्राणियों को मारने से भी उनके लिए एक जगह रिजर्व है नरक लोक में, उनके लिए एक नरक लोक होता है, वो नाम भूल गए कौन सा है वो, तो ऐसे प्राणियों को मारने के लिए भी एक नरक लोक है, जो अनावश्यक बिना वजह ऐसे प्राणियों को मारते रहते हैं, तो उनके लिए भी स्थान है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडुक्य ऋषि, और ये मांडुक्य ऋषि को क्या हुआ कि एक बार अचानक जब अपने आश्रम में बैठे थे तो राजा के सिपाही वहां एक चोर को ढूंढते हुए आए। वास्तव में चोर भी उनके आश्रम की दिशा में ही आया था, तो चोर के सिपाहियों ने सोचा कि शायद यही ऋषि चोर है, तो उन्होंने उनको आक्रमण किया, उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया और सूली पर चढ़ाने वाले थे, और बस चढ़ने ही वाले थे, उनके ऊपर आक्रमण हुआ भी, लेकिन बस बाल बाल बच गए, क्योंकि तब तक खबर राजा तक पहुंच गई कि मांडू की मुनि के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाया हुआ है और उस सूली पर चढ़ने वाले हैं, बस चढ़ ही गए। उस समय राजा दौड़ते हुए आया, कहा अरे रोको रोको, सिपाहियों से कह दिया इनको मत मारो, क्यों मार रहे हो, ये तो चोर नहीं है। फिर खैर मृत्यु से तो बच गए, लेकिन बड़े विचलित हुए मांडू के मुनि, उन्होंने राजा से पूछा कि क्यों किया ऐसे, नहीं हमारे सिपाहियों से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो मांडू के मुनि को क्षमा करना ही पड़ा, लेकिन मांडू के मुनि ने क्या किया, सीधे जाकर वो पहले यमराज से के दरबार में गए, यमराज से जाके पूछा कि मैं तो एक ऋषि हूं, मुनि हूं, मैंने किसी के प्रति कोई पाप नहीं किया, इतनी सारी तपस्या मैंने की, बल्कि इतना पुण्यवान जीवन मैंने जिया है, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो उस समय यमराज ने देखा, खातों को देखा, जो भी उनकी किताब है जहां सब लिखा हुआ था किसने क्या किया है, चित्रगुप्त से बुलाया, अरे सेक्रेटरी लाओ तो सही, इनका देखते हैं क्या क्या लिखा है, चलो। तो देखा, अरे हाँ, आपने बचपन में जो एक कीड़े को आपने एक बड़े धार वाले उस घास से आपने टोंट दिया था, बच्चे करते हैं ना अक्सर, बच्चे कभी कभी बड़े क्रूर होते हैं, बच्चों को आपने कभी कभी देखा होगा, बच्चे भी पशु की तरह होते हैं, उनको पता नहीं चलता कष्ट देना क्या नहीं, और कभी कभी बच्चे कीड़ों को जानबूझकर उनके पंखे उखाड़ देते हैं मक्खियों के, ऐसे उनको आनंद आता है कभी कभी बच्चों को, इसलिए उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कितना कष्ट हो सकता है, और जानबूझकर किसी पॉइंटेड चीज को लेकर, छुरी को लेकर काटेंगे, किसी कीड़े को काटेंगे, ऐसा कुछ करना बच्चे आनंद लेते हैं कभी कभी। तो इन्होंने भी बचपन में ऐसे कुछ किया था, एक बहुत तेज धार वाले घास से लेकर टोच दिया था उसको, तो उसकी वजह से उनको ये कर्म का फल मिला कि उनको भी कोई आके तलवार से टोच दे, प्रहार कर दे। तो मांडू के मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि अरे जब व्यक्ति बच्चा होता है वो निर्दोष होता है, और उसे पता नहीं चलता कि सही क्या गलत क्या है। और ऐसे अज्ञान की अवस्था में अगर किसी ने कोई पाप किया, उसके लिए आप इतना खतरनाक एक इतना ये सजा दे रहे हो, आपकी मूर्खता है। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको, आप योग्य नहीं हो इस कुर्सी के लिए, आपको शूद्र का एक शरीर पृथ्वी लोक पर मिलना चाहिए। और फिर यमराज को ये शाप स्वीकार करना पड़ा, और यमराज आगे चल के कौन बने? विदुर बने। पांडु और धृतराष्ट्र के भाई विदुर, फिर विदुर बनना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विदुर को शाप, यमराज को शाप तो मिला होगा, लेकिन कानून तो वैसे का वैसे रहा, कानून बदला नहीं। भागवत में यह हमें वर्णन नहीं आता कि यमराज ने कानून बदल दिया क्योंकि उनको शाप मिल गया। दूसरे शब्दों में, बचपन में भी अगर कोई पाप किए जाते हैं तो उनका भी फल हमें भुगत कर ही रहना होगा। तो छोटे से काम के लिए, एक छोटे से कीड़े के लिए अगर हम इतनी हत्या करेंगे तो हमें फल मिलता है, तो बड़े बड़े पशुओं की हत्या करेंगे और खास करके गाय की हत्या करेंगे तो हमें कितनी सजा मिलने वाली है, कितना दंड मिलेगा, कितना दुख भुगतना पड़ेगा हमें, इसकी कल्पना लोगों को नहीं है। और यहां नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी कहानी बता रहे हैं राजा पुरंजन की। और राजा पुरंजन की क्या दशा हुई मृत्यु के बाद में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पशुओं की हत्या की थी, जिन पशुओं की हत्या उन्होंने की थी वही पशुओं ने आकर अपने सींग से ऐसे आक्रमण किया राजा पुरंजन के ऊपर, और ऐसे लगा कि उनकी बस खंड खंड होकर चूर चूर उनकी होने वाली है। तो इसलिए समाज में अगर हमें सुख शांति चाहिए तो सभी को न केवल शाकाहारी बनना है, लेकिन ये शाकाहारी आहार भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए, फिर सारे समाज में सभी लोग सुखी रह सकते हैं। नहीं तो ये कर्मों के फल आकर ही रहेंगे और इस प्रकार से ज्यादा लोग बहुत दुख की अवस्था में रहेंगे। आजकल जो भी हम देख रहे हैं कठिनाइयां, कष्ट हो रहे हैं सारे विश्व भर में, वो केवल इसलिए है कि पशु हत्या बहुत बढ़ गई है और भ्रूण हत्या, भ्रूण मतलब जो बच्चे पेट में बच्चा होता है, गर्भपात करते हैं और फिर पशुओं की हत्या करते हैं। इसकी वजह से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा क्रूर और निर्दयी बनते जा रहा है। और यह भी बताया जाता है कि जिस हद तक आदमी पशु की हत्या को सही माने और उसमें कोई दोष नहीं देखे, उस हद तक जब मनुष्यों का की हत्या होगी उसे भी धीरे धीरे से वो ठीक समझने लगेगा। आजकल हम देखते हैं कि इतने युद्ध हो रहे हैं और लाखों लाखों लोगों की हत्या हो रही है और लोग ऐसे मर रहे हैं मानो कि जैसे मक्खी या मच्छर हो, और दूसरे लोगों को कोई परवाह नहीं होती कि ठीक है हम अखबार पढ़ते हैं हर रोज, आज 50 लोग मर गए, आज एक्सीडेंट हुआ, आज युद्ध हुआ, इन्होंने बम फेंके, इतने लोग मर गए, बस एक अंक है, आंकड़ा है हमारे लिए, आज के अंक इतने हैं 50, कल 60 थे, आज 80 होंगे, बस अंक बने हैं हमारे लिए। कि दया हमारे हृदय में कभी रहती नहीं है कि अरे इतने सारे लोग मर गए, आदत पड़ जाती है हमारे अंदर। और खास करके जो लोग मारते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने पशुओं की हत्या करके उनका हृदय पत्थर की तरह हो गया है, इसलिए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए मनुष्यता को वापस लाने के लिए, दिव्य अवस्था की बात तो दूर है लेकिन मनुष्यता को फिर से लाने के लिए हमें चाहिए कि समाज में इसका प्रचार जोरों से होना चाहिए कि कम से कम, ठीक है भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो कम से कम पशु हत्या तो बंद करो, ये भ्रूण हत्या तो बंद करो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो कम से कम बुरा काम तो बंद करो। इस स्तर पर तो प्रचार कम से कम चलना चाहिए समाज में। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो खुद ब खुद ये सारे पाप कर्म करना बंद कर देता है, उसे खुद ये बहुत तुच्छ और बहुत ही इन कार्यों से घृणा होने लगती है और फिर खुद ब खुद इन सब चीजों से वो ऊपर आ जाता है और सबसे अच्छा कार्य भगवान की भक्ति में वो लग जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हमें बिना वजह के मारना नहीं चाहिए, उनको भी आपके खून के ऊपर थोड़ा अधिकार है। उनको भी जैसे बताया जाता है कि घर में जो वस्तुएं हैं, अनाज है, कुछ है, या खेत में जो आप अनाज हैं, वो केवल उसका हक आपका नहीं है। आप देखेंगे कि पुराने काल के जो वास्तव में धार्मिक जो किसान होते थे, वो जानते थे कि हमारा जो भी उत्पादन होगा उसका अमुक जो प्रतिशत है वो पक्षियों के लिए है, प्राणियों के लिए है, है। इसलिए हम देखते हैं कई जगह ऐसे किसान हैं आज भी जिन्होंने पक्षियों को बैठने के लिए एक डंडा बना के दिया है अच्छी तरह से टी शेप में, ताकि पक्षी आके बैठे वहां खाकर शांति से खाके जाए अपना अन्न खेत से। उसी प्रकार से घर में भी जो हम रखते हैं उसका थोड़ा प्रतिशत चूहों के लिए है, कॉकरोच के लिए है, कीड़ों के लिए, ऐसे है। वो आएंगे, खाएंगे, वो उनका जो उनका हक है वो लेकर जाएंगे। हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर को इतना गंदा रखें हैं कि बस वहां यह कॉलोनी शुरू हो जाए चूहों की। लेकिन हमारे प्रयास के बावजूद अगर कोई पशु चले भी आए, खाए, तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम घर में नहीं हम ला सकते उनको, तो बाहर तो पशुओं को खिलाना चाहिए थोड़ा बहुत। ये एक प्रथा है, गांव में ऐसे आज भी करते हैं, शास्त्रों में बताया जाता है। तो कभी कभी अनजाने में मच्छर ने काट लिया, फट करके हमने मार दिया, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मारने से अच्छा ये है कि हम उनको दूर रखें। ऐसे कई साधन हैं जिनसे मच्छरों को दूर रख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो प्राणी अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, घर को, मंदिर को, सब जगह स्वच्छ रखेंगे, तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। और जब हम गांव में जाते हैं जहां खेत वगैरह है, वहां तो होंगे ही ना, चूहों को कहां कब तक आप रोक के रख सकते हैं। जहां सब अनाज है, ये सब चीजें मिट्टी के घर है, वहां थोड़े बहुत तो पशु प्राणी आते ही रहेंगे। तो उनके संग में हमें रहना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सब भगवान के बच्चे हैं, न हम केवल बच्चे हैं। ये जो भी कुछ अनाज होता है, ये अनाज का उत्पादन करने के लिए हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ी है, उनमें से क्या किसी एक भी चीज का निर्माण हमने किया है? अनाज का उत्पादन करने के लिए कौन सी वस्तु चाहिए होती है, बताइए। गोबर का खाद चाहिए और पानी चाहिए, हवा चाहिए, बीज चाहिए, मिट्टी चाहिए, बैल चाहिए, लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, में से किसी एक भी चीज को हमने बनाया है? सब कुछ भगवान ने दिया है। तो जब भगवान ने दिया है तो उनके सब बच्चों के लिए दिया है। पिता जब घर में कोई लाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे के लिए लाते हैं, सब बच्चों के लिए लाते हैं ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब यहां कुछ बनाया है, सब कुछ सब बच्चों के लिए बनाया है, केवल मनुष्य के लिए नहीं है, सारे प्राणों के लिए उन्होंने बनाया। केवल मनुष्य है जो दूसरों का हिस्सा छीन लेना चाहता है। पशु प्राणी केवल अपने अपने हिस्से से संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि जब शेर आपके घर में आपकी रोटी खाने नहीं आता, तो आप उसके दरबार में जाके उसकी बकरी क्यों खाना चाहते हैं? वो आपका भोजन खाने कभी नहीं आता, वो उसका हिस्सा संभाल के रह रहा है, तो आप अपना हिस्सा संभाल के रखिए। आप आपकी दाल रोटी सब्जी चावल खाइए, आप क्यों उसका भोजन खाने जा रहे हैं? तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा बदमाश है जो कि दूसरों के हिस्सा लेने जाता है। पशु कोई नहीं करते ऐसे, ऐसी बदमाशी कोई भी दूसरे योनि नहीं करते, केवल मनुष्य अपने हक से, अपने जो दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमें कम से कम हमें पशु हत्या करनी चाहिए, या कीड़ों की हत्या भी जो भी है, कम से कम, जितना कम हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में हमारा अनुभव है कि पहले भी जब हम जितना ज्यादा मच्छरों को मारते थे उतने ज्यादा मच्छर तंग करते थे, लेकिन जब मारना बंद किया तो तंग उनका उनसे उनकी ओर से तंगी जो हो भी कम हो गए। ये अनुभव है, भगवान भी उनके हृदय में हैं, वो भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? फिर भी पाप तो बहुत लगेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी चीज के लिए इस प्रकार के पशु हत्या हो जाए तो इसका इस पाप का फल तो हमें मिलकर ही रहना है। इसलिए जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको अपने कॉलेज में स्कूल में कह देना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, धार्मिक दृष्टि से हमारे लिए वर्जित है। और आजकल कई ऐसे हैं जो कि कॉलेज अधिकारी वगैरह जो मानते हैं कि ठीक है नहीं करेंगे, केवल आपको पिक्चर में दिखाएंगे फिर आप देखिए। और वैसे भी आजकल मेंढकों की कमी हो गई, क्योंकि इतने सारे मेंढकों को मार दिया इन्होंने और इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आजकल केवल वो कोई बात चल रही थी, कोई कॉलेज के विद्यार्थी बता रहे थे कि आजकल वो सोच रहे हैं कि केवल पिक्चर दिखा के वो समझाएंगे। तो क्या पहले नहीं कर सकते थे ऐसे? इतने सारे बंदरों को वो एक्सपोर्ट करते थे केवल मेडिकल रिसर्च के लिए, कितना पाप। बंदरों को, मेंढकों को, अन्य सारे प्राणियों को क्या आवश्यकता है? ये सब उग्र कर्म है, रजोगुण तमोगुण का विज्ञान है। ये सब जो भगवान ने इतने अच्छे अच्छे जड़ी बूटियां वगैरह दिए हैं उनको छोड़कर हम इस स्थल पर आए हैं और इतने पाप करते हैं, तो पृथ्वी माता ने जड़ी बूटियां भी वापस ले ली हैं, आधा किसी को पता नहीं चलता कौन सी क्या जड़ी बूटियां हैं। जो खराब चीजें हैं हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं, चाय, कॉफी, तंबाकू, ये सब बढ़ते जा रहे हैं उत्पादन इनका, हम लेते जा रहे हैं। अफीम, जो भी वो सब चीजें होते हैं, इनका उत्पादन बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो लाभदायक हैं मनुष्य के लिए, औषधि वनस्पतियां हैं, इतने सारे हैं, उनका हम प्रयोग क्यों नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा? और कोई प्रश्न हैं? तुम साफ कर रहे होते हैं तो कई मच्छर ऐसे मर जाते हैं साफ करते करते। हाँ, केवल ऑल्टर साफ करते हुए नहीं, बताया जाता है कि हर एक घर में 5 प्रकार के पाप होते हैं जो हर दिन हर गृहस्थ करता है। गृहस्थ क्यों? हर एक व्यक्ति जो भी, जैसे कि जब हम झाड़ू लगाते हैं कई प्राणी मर जाते हैं, पानी उबालते हैं कई प्राणी मर जाते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप पानी या कुछ डालते हैं कई कीटाणु मर जाते हैं, आप आग जलाते हैं कई प्राणी मर जाते हैं। इस प्रकार से इसलिए पंच यज्ञ करने चाहिए, 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, ताकि इन सारे यज्ञ करने चाहिए 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए। जिस घर में यज्ञ नहीं होता उनको इन सारे पापों का फल भुगतना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे दैनिक कार्यों में भी न चाहते हुए अनजाने में भी हम इनको मार देते हैं, तो इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए कि अनजाने में भी किया हुआ पाप उसका फल हमें न मिले, तो इसलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं। तो जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरे शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जानबूझकर हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाए भगवान की सेवा में तो फिर भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हमने उनका आश्रय लिया हुआ है, हम यज्ञ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ करने से हमारे जो भी पाप है वो धुल जाएंगे और कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा साथ साथ। यह है कि जो बड़े बड़े राजा शिकार के लिए जाते थे क्या उनको कर्मों का फल मिलता था? अवश्य, यह तो देख रहे हैं राजा पुरंजन, उन्होंने बलि में बहुत लोगों को चढ़ाया, बहुत पशुओं को चढ़ा दिया बलि में। और पहले जो प्राणारोध हमने कहा वो जो नरक है इन्हीं लोगों के लिए है जो शिकार के लिए जाते हैं। शिकार क्षत्रिय के लिए इसके लिए अनुमति दी जाती थी इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत खून को देखकर घबराए नहीं, आक्रमण करने के लिए हिचकिचाए नहीं, जब बुलावा आए युद्ध के लिए तो अच्छी तरह से साहस से युद्ध करें। उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से कभी कभी उनको अनुमति दी जाती थी युद्ध ये शिकार करने के लिए, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी उस पाप का फल उनको भुगतना पड़ता था। लेकिन आजकल लोग इस दृष्टि से उसको नहीं देखते, केवल एक भोग की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ये पाप अवश्य उसका फल भी उनको मिलता है। इसलिए शिकार करना बड़ा पाप है। कहा कि पशु हत्या पाप है, तो दूसरे प्राणी जो अन्य प्राणियों को मारते हैं उनका क्या? पाप और पुण्य यह प्रश्न केवल मनुष्य जीवन में आता है। पशुओं के लिए कोई पाप नहीं होता। जब कोई शेर बकरी को खा जाता है तो उसके लिए पाप नहीं है, उसका तो स्वाभाविक आहार है वो। और जब मच्छर हमें हमारा खून पी लेते हैं तो उनके लिए कोई पाप नहीं, लेकिन हम किसी का खून पी जाए हाँ तो बहुत पाप है। मच्छर के लिए, प्राणियों के लिए, पशुओं के लिए पाप नहीं होता, पाप पुण्य का प्रश्न नहीं आता। वो केवल अपने पाप पुण्यों का फल भुगत रहे हैं बस। जो मनुष्य जीवन में पाप हुए थे उनका फल अभी वो भुगत रहे हैं, भुगतने का केवल वो की वो योनियां हैं। निर्दोष व्यक्तियों को तो नहीं मारना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को मारने से तो किसी को भी फल मिलेगा, उसका फल, उसके पाप का फल मिलेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आक्रमण जो व्यक्ति करता है उसके आक्रमण से बचने के लिए अगर हम युद्ध करते हैं तो फिर वो ठीक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। जो हमसे युद्ध नहीं कर रहा है, एक कोने में बैठा है, वो उसको जाके अचानक मार दिया तो ये अच्छा नहीं है। हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया और फिर हमने उसका प्रतिकार किया तो फिर वो पाप नहीं है। तो जो निर्दोष है उनमें से जिनकी हत्या हो रही है तो उनका फल उनको भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को। अब ये तो केवल भगवान ही जानते हैं कौन दोषी है कौन निर्दोष है। वो भगवान के दरबार में यमराज सब देख रहे हैं किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, किसके हाथों से कितना पाप हो रहा है, वो तो वही जानते हैं। हमारे लिए ये सब कहना बहुत मुश्किल है, हम नहीं जान सकते इन चीजों को, वाले नहीं है। वहां तो केवल दुख ही दुख है, उसको और कुछ सोचता ही नहीं है, केवल दुख, और केवल अपने जो पाप किए हैं उसके ऊपर पछताता रहता है। अरे रे मैंने तो ये पाप किया, इसका फल मुझे मिल रहा है, अरे रे वो पाप किया, अभी ये मेरे को पक्षी खा रहे हैं। तो वहां केवल दुख ही दुख है, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। और स्वर्गलोक में जाए सुख ही सुख है, भोग ही भोग, इसलिए वहां भी भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। यहां पे मिश्रण दोनों का, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, तो भगवान का स्मरण थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी लोक ही सबसे अच्छा है भगवान की प्राप्ति के लिए। न हमें नरक जाना चाहिए न हमें स्वर्ग जाना चाहिए, यहीं से सीधे हमें वन वे टिकट लेना है गोलोक वृंदावन, कहीं हॉल्टिंग नहीं लेना है, वाया स्वर्ग लोक नहीं जाना है, सीधा डायरेक्ट ट्रिप लेना है। वाया स्वर्ग लोक जाएंगे तो वहां परेशानी है, वहां से रिटर्न भेज देंगे तो तकलीफ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। आज बहुलाष्टमी है, तो बहुलाष्टमी के बारे में हम रविवार को चर्चा करेंगे संडे क्लास में।